Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ananta Shri Vibhushita Pratasmaraniya Shrotriya Brahmanishtha महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए प्रिय आत्मस्वरूप मधु बाबू जी तिजोरी वाला जी समस्त साधकजन श्रोताजन कठोपनिषद के अंतर्गत बालक नचिकेता के लिए आचार्य यम ज्ञानोपदेश करते हुए कहते हैं सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहीण ब्रवीमि ओम इत्येतत् एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम वरम एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया, आत्मज्ञान का, और उपदेश के लिए शब्द का आश्रय लिया ओम। अर्थ को शिष्य के हृदय में प्रकट करने के लिए आलंबन चाहिए। बिना माध्यम मैंने कल तीन प्रकार के आलंबन बताए थे, शब्द, संकेत और मौन। श्रेष्ठ आलंबन है मौन। जो उत्तम कोटि का अधिकारी होता है उन्हें कहना नहीं पड़ता है, गुरु के मन के मौन को वो समझ लेता है और शिष्य के हृदयस्थ संपूर्ण संदेह मिट जाते हैं। लेकिन मौन यदि समझने की योग्यता नहीं है तो गुरु संकेत का आश्रय लेते हैं, इशारा कर देते हैं। इशारे की भाषा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। मौन तो नहीं है लेकिन कुछ तो संकेत हैं। और इतनी उच्च कोटि की मनस्थिति न हो जो संकेत को भी समझ सके तो गुरु फिर शब्द का आश्रय लेते हैं, फिर प्रवचन का आश्रय, उपदेश का आश्रय, श्रवण मनन निधिध्यासन अनेकों प्रकार की साधनाएं करते करते अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है तो हम उस तत्व को समझने योग्य बन जाते हैं। तो शब्द ये जनसामान्य आलंबन है जिसके द्वारा अर्थ को प्रकट किया जा सकता है। परम अर्थ जो परमात्मा आत्म तत्व, उसको कहने के लिए उन्होंने शब्द का आश्रय लिया ओम इत्येतत्। पहले श्लोक के तीनों पादों में उसके महात्म्य का भी प्रतिपादन किया और आपके 16वें श्लोक में कहते हैं एतत् आलंबनम श्रेष्ठम। यह जो ओम का आलंबन ये बहुत श्रेष्ठ है। वैदिक नाम आत्म तत्व का जो सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता है जिसको वे 18 श्लोक में 18वें न जायते मृते वा कदाचिन स्पष्ट रूप से तत्व का उपदेश कर देंगे, ओम को श्रेष्ठ आलंबन बोल रहे हैं। और सचमुच ये ओम जो है श्रेष्ठ आलंबन है। आप मांडुक्य उपनिषद को पढ़ेंगे, मांडुक्य उपनिषद में प्रणवोपासना, प्रणोपासना का विधान है। ये ओंकार में चार पाद हैं। ओंकार चार पाद से परिपूर्ण है और चार पाद जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, प्राज्ञ, विश्व, तेजस और तुरीय। आप इस बात को ध्यान देके सुनेंगे, विषय बहुत गहरा है। हमारे जीवन की जो अनुभूति है वो जीवत्व की अनुभूति है और इस जीवत्व की अनुभूति में तीन चीजें हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। यदि हम बहुत सरल शब्दों में इसको कहना चाहें तो हमारी जीवन की अनुभूति जागना है, हमारी जीवन की अनुभूति सोना है और तीसरी अनुभूति स्वप्न देखना है। इससे परे चौथी कोई अनुभूति नहीं है। हम आंख खोलते हैं तो जागते हैं, सारी इंद्रियां बाह्य पदार्थों को जानने लगती हैं। ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था एक आम आदमी की अवस्था है, एक आम आदमी की अनुभूति है और इस अनुभूति को करने वाले जीवात्मा का नाम लखा उर्खाओ की विश्व। विश्व के साथ जुड़ने के कारण जीवात्मा को विश्व कहा है और हम सो जाते हैं, सोने वाले जीवात्मा का नाम प्राज्ञ रखा। प्राज्ञ माने प्रकर्षण अज्ञ, अच्छी प्रकार से वो अज्ञान में चला जाता है। जीवात्मा सुषुप्ति में जब चला जाता है तो अच्छी प्रकार से प्रगाढ़ नींद का अर्थ है अभाव प्रत्यय अलंबना वृत्तिर निद्रा। जब पतंजलि ने निद्रा की परिभाषा की, निद्रा को भी एक वृत्ति माना है उन्होंने। जब आप बोलते हैं ना योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाश्च। और उन पांच वृत्तियों में ये वृत्ति भी है, नींद भी एक वृत्ति है और योग का अर्थ है नींद पर भी नियंत्रण। इस नींद वृत्ति पर भी नियंत्रण जिसका हो, तो उन्होंने परिभाषा दी नींद की परिभाषा, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा। निद्रा माने अभाव की प्रत्यय को विषय करने वाली। आप जब जग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानता था, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, मैं सुख से सोया था कुछ नहीं जानता था। ये बहुत गहरे में अज्ञान को विषय करने वाली वृत्ति है कि मैं कुछ नहीं जानता था, प्रगाढ़ नींद में था। ये अज्ञान को विषय करने वाली जो वृत्ति है उसी वृत्ति को नींद बोला है और इसीलिए उस जीवात्मा को, अज्ञान का अनुभव करने वाला जीवात्मा, उसको प्राज्ञ कहा। और जब स्वप्न देखता है तो तेजस बोला, प्राज्ञ तेजस और विश्व, विश्व प्राज्ञ और तेजस, ये तीन हमारी जीव की अवस्थाएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन तीन चीजों का अनुभव होता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, शिक्षित हो चाहे अशिक्षित, जीव हो चाहे वो जीव के अंतर्गत मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। ये तीन अवस्थाओं का अनुभव उसके पास है, लेकिन चतुर्थ जो अवस्था, उसको चतुर्थ अवस्था ही कहा है। बड़ी मजेदार बात, तुरीय का अर्थ होता है चतुर्थ अवस्था। इन तीन चीजों का अनुभव तो है लेकिन जो तुरीय अवस्था, जो चतुर्थ अवस्था है, उसका हमें अनुभव नहीं है। और वो कैसी है, आप ऐसी कल्पना कीजिए, एक ऐसी अवस्था है कि वहां हम न सो रहे हैं न वहां जग रहे हैं और न हम स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन है हमारा अनुभव तो तीनों का ही है। या तो हम जगते हैं, या तो हम सोते हैं, या तो स्वप्न देखते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज, एक ऐसी अवस्था जहां हम जग नहीं रहे हैं, या फिर आपका अनुभव जग नहीं रहे तो सो रहे होंगे, बोले नहीं सो भी नहीं रहे हैं, जग भी नहीं रहे हैं, सो भी नहीं रहे तो स्वप्न देख रहे होंगे, बोले नहीं स्वप्न भी देख नहीं रहे। आप ऐसी अवस्था की कल्पना करो कि जहां न जागना है, न सोना है और न स्वप्न देखना। वो जो अवस्था है उस अवस्था का ही नाम बोला तुरीयम, चतुर्थ मन्यते। ये जो तुरीय अवस्था है, ये चतुर्थ अवस्था, ये आत्म तत्व की अवस्था है, ये लक्षार्थ की अवस्था है, लक्ष्य। अज्ञान की अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सारी अज्ञान जन्य अवस्थाएं। ये सारी चीजें अज्ञान में होती, जागना, सोना, स्वप्न देखना। लेकिन ज्ञान की जो अवस्था है ये चतुर्थ अवस्था, ज्ञान की अवस्था। तो मांडुक्य उपनिषद में आप जब पढ़ते हैं तो ज्ञान की अवस्था जो चतुर्थ तुरीय अवस्था है, ये हमारी अधिष्ठान आत्मसत्ता की अवस्था है और ये ओंकार का लक्षार्थ है। जब हम ओम ऐसा बोलते हैं ना, तो ओम के अंतर्गत ही ओम को विश्वात्मक माना है। आप इसको बहुत गहराई से आप देखेंगे, ये जो उपदेश कर रहे हैं बहुत गहरा उपदेश कर रहे हैं। ओम ओंकार मात्र मिदम जगत, जब मांडुक्य उपनिषद में ओंकार की उपासना बताई तो ओंकार को संपूर्ण विश्वात्मक माना है। ओंकार मात्र मिदम जगत, जब वशिष्ठ जी महाराज राम जी को उपदेश कर रहे थे उस समय भी ओंकार का उपदेश करते हुए उन्होंने कहा, हे राम, संपूर्ण विश्व ओंकारमय है, संपूर्ण विश्व ओंकारमय है। ओंकार शब्द का जब आप उच्चारण करें तो आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि संपूर्ण विश्व। और तद जपस तदर्थ भावनम, ये पतंजलि का सूत्र हमेशा सामने रखना चाहिए कि जब आप भगवान का नाम ले तो आपको उसके अर्थ का प्रकाशन होना चाहिए। एक सामान्य, जैसे मैं कहूं गिरीश बाबू तो आपको दिखाई देते कि नहीं, आपको एक विशेष आकृति, लंबे चौड़े आपको मालूम पड़ते हैं। जैसे ही उनका नाम ले तो आपको एक भव्य आकृति आपके सामने दिखाई देती है। कभी ऐसा होता है क्या कि आंखों के सामने ओझल हो रही वो चीज साफ साफ दिखाई देती है कि नहीं? वैसे ही नाम अर्थ को प्रकट कर ले हमारे मनस्थिति में स्मृत्यात्मक रूप से। तद जपस तदर्थ भावनम का अर्थ ही है, जैसे आप नाम ले तो उसका अर्थ प्रकट हो जाए। तो जैसे आप ओम ऐसा बोलेंगे तो आपके सामने क्या प्रकट होना चाहिए? संपूर्ण विश्व। भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, जब ओम का उच्चारण करो तो तुम्हारे सामने संपूर्ण विश्व, अनंत ब्रह्मांड, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, तारांगन, आपकी पृथ्वी, सब कुछ, और उसके साथ परमात्मा भी, दोनों अर्थ है उसके। उसके दोनों अर्थ है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, प्रणवार्थ जो है ना, ये तीनों है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और चतुर्थ जो तत्व है तुरीय आत्म तत्व, वो भी प्रणव का अर्थ है। जब हम ओंकार का उच्चारण करें तो संपूर्ण विश्वात्मक हो जाए और उसमें परमात्मा का विभाव जगे। वो चतुर्थ मालूम नहीं पड़ता है, वो स्वसंवेद्य है, वो इंद्रियातीत तत्व है। जब आप ओंकार का उच्चारण करेंगे तो इंद्रियातीत जो तत्व है उसका अनुभव तो नहीं होगा, वो तो लक्षार्थ है, स्वसंवेद्य आत्म तत्व है। तो जब हम ओंकार का उच्चारण करें तो ओंकारार्थ संपूर्ण विश्व के साथ हम जुड़ जाए। इसलिए ओम जो है इसकी बहुत बड़ी गहरी महिमा गाई है। सन्यासी के लिए तो ओम का ही जप करने का विधान है, और वो जप करेगा तो उसमें तत्वमसि आदि महावाक्य भी निकल पड़ते हैं। यही तो है तत्वमसि महावाक्य। तत्वमसि महावाक्य का अर्थ तो यही है। वेदांत में सर्वोच्च वाक्य माना जाता है तत्वमसि। और तत्वमसि का अर्थ क्या है? तत्वमसि का अर्थ है उस परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति। जो वाक्य अनुभूति को पैदा करता है एकत्व की परमात्मा के साथ, उसी वाक्य को हम महावाक्य बोलते हैं। माने जीव अपने स्वभाव को पहचाने, और उसका जो स्वभाव है वो परमात्मा है। जीव का स्वभाव परिच्छिन्नता नहीं है, ये परिच्छिन्नता जो है धर्म अंतःकरण का है। ये परिच्छिन्नता धर्म शरीर का है। जीव का जो स्वभाव स्वधर्म है गहरी अनुभूति, वो परमात्मा है, वो अपने को पहचाने। अपने को पहचाने का अर्थ है जो जीव अपने परमात्मा के भाव को नहीं पहचानता है वो पहचान ले। हमें अपने आप को पहचानना है। और अपने आप को का मतलब क्या है? अपना आपा परमात्मा का आपा है। भगवान ने बोला ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। सबके भीतर मैं हूं। अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। मैं ही वैश्वानर अग्नि बनकर, भगवान कहते मैं ही सबके हृदय में विराजमान होकर संपूर्ण दुनिया को चलाता हूं, शरीर को भी चलाता हूं। वो है तत्व। अपना आपा जो है वो परमात्मा का होना है, लेकिन जीवात्मा अपने होने को शरीर के साथ जोड़ देता है। वो मन के साथ, चित्त के साथ, बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ जोड़ देता है। और उसके बाद उसको फिर अपने होने का भाव जगता है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं। लेकिन उसका जो मूल स्वभाव वो परमात्मा का होना है, आप उसको पहचानना है। तो तत्वमस्यादि महावाक्य क्या करते हैं? उसके होने को, उस परमात्मा के भाव को प्रकट करते। तत्वमसि, तुम वही हो। तुम्हारा होना जो है वो परमात्मा का होना, शरीर का होना नहीं है, इंद्रियों का होना नहीं। ये सारी चीजें अज्ञानजन्य शरीर के साथ जुड़ी हैं। तो वाक्य इसीलिए महावाक्य हैं क्योंकि वो हमें हमारे भीतर से परमात्मा के भाव को जगाकर हमें उस परम सत्ता परमात्मा में ले जाता है। और हमारा स्वभाव भी है नारायणी, सचमुच जिसका जो स्वभाव होता है ना वो उधर प्रवाहित होता है। जिसका जो स्वभाव होता है व्यक्ति के जीवन में उधर खिंचाव होता है। अब जैसे आपका स्वभाव सत्संग है, आप कहीं भी दूर चले जाइए आपका मन खींचता है। कभी कभी लगता है कि यार ये क्या है, सब कुछ छोड़ करके हमको व्यापार में जाना पड़ रहा है। आपका जो स्वभाव है ना वो खींचता है। जैसे 7:30 होने वाले, चलो जल्दी जल्दी चलो, कितना भी बड़ा प्रलोभन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपका जो स्वभाव है सत्य, आपका स्वभाव सत्य है। और इसीलिए आप खींचे हुए चले आते सत्य के संग के तरफ। आपको सत्संग क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि आपके भीतर सत्य का अस्तित्व प्रकर्ष है, आपका स्वभाव है। और आपको मालूम है अवचेतन मन में अपने को बहुत ज्यादा विचार भी नहीं किया है, अवचेतन मन खींचता है उस सत्य के तरफ। हमारे स्वभाव में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पृथ्वी का स्वभाव जड़ता है, गुरुत्वाकर्षण। जैसे आप कोई भी पत्थर आप आकाश में फेंकना, वो पत्थर जमीन पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मूल जो तत्व है वो पृथ्वी है। आप पत्थर को आकाश में फेंकेंगे तो वो पत्थर जमीन की तरफ आना खींचता है, वो मूल की तरफ खींचता है। आप पांचों भूतों को आप देखना, आप जल को बहाना, जल जैसे बहता है तो किधर बहता है? समुद्र के तरफ है। वास्तविक जो गति है, उसके प्राणों की जो प्यास है जल की, वो समुद्र निकला वहीं से। उसका मूल उद्गम तो समुद्र ही है। समुद्र से बाष्प बना, बाष्प से बादल बने और जल बहा, और अंत में कहां पहुंचता है? उसका जो स्वभाव है, उसका जो मूल जो है वो समुद्र है, इसलिए वो समुद्र की तरफ बढ़ता है। अग्नि जला देंगे, जैसे अग्नि जला देंगे तो ऊपर की ओर उठती हैं वो, इसलिए अग्नि का नाम भी है अग्रे नयति इति अग्नि। अग्नि शब्द का वास्तविक अर्थ है अग्रे नयति इति अग्नि, जो आगे ले जाए, जो उठा ले, ऊपर ले जाए। जैसे आप आहुतियां डालते हैं वरुणाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा, तो ये सारी आहुतियां देवता तक पहुंचा देते, आगे बढ़ा देते। ये ऊर्ध्वगामी, ये ऊपर उठने वाला जो स्वभाव अग्नि का है। नचिकेतस से यहां जो परिभाषा दी तो उनको भी बोला कि भैया नचिकेतस, नचिकेता का बिना, ये अग्नि का बिना है। क्योंकि बालक नचिकेता का जो जीवन है ऊर्ध्वगामी, वहां कितनी सारी चीजें मिल रही थी उन्हें, हम लोग तो प्रसाद में अटक जाते हैं, और उनको कितना सारा कुछ मिल रहा था। इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने क्या किया, वो नहीं चाहिए हमको, आत्मतत्व चाहिए। आप वो चीज बताइए जो आपके जीवन की गहरी से गहरी अनुभूति है, आत्मतत्व की अनुभूति आपके भीतर है। यत पश्यसि तद्वद, उनका जो मूल स्वभाव, जो ऊर्ध्वगामिता, जो ऊर्ध्वमूल मदशाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, ये ऊर्ध्व परमात्मा और ऊर्ध्वगामिता ये स्वभाव। और इसलिए बालक नचिकेता का एक नाम भी पड़ा अग्नि, नचिकेतस अग्नि। अग्नि का मूल स्वभाव है ऊपर की ओर उठना, और हमारा भी स्वभाव ऊपर की ओर उठना है। और उस स्वभाव जब जग जाता है ना, तो व्यक्ति फिर वो सत्य की तरफ, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार की ओर नहीं अब वो प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है, असत्य की ओर नहीं वो सत्य की ओर बढ़ने लगता है, दुख की ओर नहीं वो आनंद की ओर बढ़ने लगता है। वो स्वभाव है सच्चिद आनंद। प्रत्येक व्यक्ति सत्य चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव सत्य है, इसीलिए वो सत्य चाहता है। सत्य चाहता मैंने होना चाहता है, कौन नहीं चाहता, नहीं हूं मान भूवम इति भूयासम इति प्रेमात्मनिक्षते, मैं ना हूं ऐसा कभी किसी को नहीं लगता है। हमेशा जीवात्मा को लगता है कि मैं हूं। पंचदिशकार ने कहा मान भूवम इति न भूवम एवं, मैं हमेशा बना रहा हूं। आदमी कितना भी बीमार हो जाए, कितना भी वृद्ध हो जाए, जर्जर, और उसके एक भी अंग अपने स्वयं के द्वारा नहीं उठते, ऐसी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। और वो आदमी भी चाहता है कि मैं कभी न मरूं। ये मूल स्वभाव, ये सत्य का स्वभाव, उसके भीतर आनंद का स्वभाव, उसके भीतर चित तत्व का स्वभाव, ज्ञान चाहता है, हमेशा चेतना चाहता है, जड़ता में जीना नहीं चाहता है। आलस प्रमाद जड़ता ये तो जीवात्मा की पराधीनता है, उसका जो मूल स्वभाव है चैतन्य सत्ता। आलस प्रमाद जड़ता आदि से ऊपर उठकर जो चेतना है जिसका स्वरूप है, आदमी चाहता है भले ही वो पराधीनता में मजबूरी में अन्य बाह्य पदार्थों में जीता तो है, लेकिन प्राणों की मूल प्यास उसकी ये चेतना है। और चेतन तत्व को, आनंद तत्व को, सत तत्व को जगाने का काम तत्वमस्यादि महावाक्य करते हैं, तत्वमस्यादि महावाक्य उसको जगाने का काम करते हैं। और आपका जो प्रणव है ना ओंकार, ये भी जगाने का काम करता है। हमें अर्थ मालूम पड़ जाए, प्रणव का अर्थ हमें मालूम पड़ जाए कि प्रणवार्थ क्या है, तो आपको मालूम पड़ा प्रणव का अर्थ जागृति भी। अब कौन सी जागृति? समष्टि जागृति। अब आपने को ओम जब हम सामने रखे तो ओम का अर्थ केवल छोटा सा वो आकार का वाला ओम नहीं समझना चाहिए। ओम माने संपूर्ण विश्व, ओम माने संपूर्ण जितनी जागृति के पदार्थ आपको दिखाई दे रहे, और उसमें मैं भी आ गए, आप भी आ गए, आपके शत्रु भी आ गए, मित्र भी आ गए, आपके मान भी आ गए, सम्मान भी आ गए, सुख भी आया, दुख भी आया, ये संपूर्ण जो विश्व सृष्टि, ये जागृति के सभी पदार्थ आपके प्रणवार्थ में आ गए। तो आप आंख बंद के ओम बोलो तो आपको सब दिखना है, सब उसमें आपकी नींद भी आ गई, आपके सारे स्वप्न भी आ गए। इतना बड़ा ये ओम जो है, इतना बड़ा ओम ओम ओम, तो आपको सारी चीजें उसके अंदर दिखाई देंगी। और जो चतुर्थ है ना, चतुर्थ वो तत्व भी दिखना चाहिए, वो मैं भी हूं, माने ओम आप भी हैं, ओम का अर्थ आप भी हैं। आपके अंदर दो चीजें हैं ना, एक वाचार्थ और एक लक्षार्थ है। वाचार्थ जीवात्मा और लक्षार्थ परमात्मा। जब भी हम अहम कहते हैं, आप बोलते अहम, अहम का अर्थ क्या है? अहम का अर्थ यहां दो है, वाचार्थ भी है और लक्षार्थ भी है। मैं मैंने कामना, विकार, जलन, घृणा, ईर्ष्या, बहुत सारी मैं के साथ जुड़ी हैं। जब भी हम मैं बोलते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, वासना विकार जुड़ जाते हैं। तो मैं का अर्थ ये भी है, अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं का अर्थ वासना भी है। क्योंकि जब हम मैं बोलते हैं तो हम वासना शून्य तत्व का अनुभव थोड़ी करते हैं। मैं, कामना, विकार, जलन, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, बहुत सारे जीव के जितने भी धर्म हैं वो सब मैं का अर्थ है। और मैं का अर्थ वो भी है अधिष्ठान, आत्म तत्व, जो अज्ञान का अधिष्ठान है, वासना का अधिष्ठान, ये संपूर्ण वृत्तियों का जो अधिष्ठान तत्व है वो भी मैं अर्थ है, वो भी अहम शब्द का अर्थ है। तो जब हम अहम बोलते हैं, इसलिए बहुत गहरी बात बोली हनुमान जी महाराज जी को, ऐसे परिचय होने लगा कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। बहुत लोगों ने अपना अपना परिचय दिया। अब बड़े आदमी हैं राम जी, और वो सब लोगों को पूछे, भैया तुम्हारा परिचय, तुम्हारा परिचय, तुम्हारा परिचय। हनुमान जी को किसी ने पूछा कि सब सबका परिचय दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं, बोले आप अपना भी परिचय दीजिए। बोले राम जी को तो मालूम है, लेकिन हम सबको तो मालूम नहीं है ना कि आप कौन हैं। उन्होंने बहुत गहरी बात बोली। उनको यही कहना था कि मैं हूं। मैं उनको सबसे बड़ा जो परिचय है क्या है? अरे बोले मैं हूं। बोले मेरे को क्या परिचय देना है, मैं तो मैं हूं। लेकिन आप यदि मैं हैं तो ये आम आदमी को थोड़ी आपका परिचय समझ में आए।